الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، معروف القرآن کی جلد نمبر 3 سے، اور تیسری آیت جو کہ ابھی تلاوت کی گئی اس کو ہم شروع کر چکے تھے پچھلی کلاس میں، اور اس کا ترجمہ مکمل کر چکے تھے جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمتہ اللہ علیہ کے ترجمے سے یہاں پر نقل فرمایا. مولانا محمود الحسن کون تھے؟ دار العلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے. ان کے استاد بھی محمود ہی تھے اور شاگرد کا نام بھی محمود ہی تھا، اور ان دونوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اس مدرسے کی ابتدا کی تھی، پڑھنے پڑھانے کی ابتدا کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا قبول فرمایا وہ ساری دنیا جانتی ہے. اچھا، تو ترجمہ مکمل ہو گیا تھا، اب خلاصہ تفسیر ہم نے پڑھنی ہے. کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں چیٹ ونڈو کے اوپر لکھ کر کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو جب پڑھیں گے تو پھر اس کا دیکھ لیں گے اس کو کیا آپ فرما رہے ہیں. تو خلاصہ تفسیر جو ہے وہ حضرت محمود الحسن شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کی ہی ایک بہت ہی اچھے شاگرد رشید حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر بیان القرآن سے حضرت نے نقل فرمائی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یعنی شیخ، پھر اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹ، پھر اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مفتی محمد شفیع خود ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی دیکھا، لیکن اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے، تو ان سے بیعت تو کر لی تھی، لیکن وہ بیعت جو تھی وہ جس کو برکت والی بیعت کہتے ہیں، کیونکہ عمر بہت چھوٹی تھی، ان کے درس میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بیعت بھی کر لی تھی، لیکن اصل میں جو اصلاحی تعلق بنایا نا وہ پھر ان کے جو مرید حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان سے بنایا، ٹھیک ہے؟ بلکہ مرید تو نہیں تھے، وہ ان کے شاگرد تھے. حضرت اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، مرید تو وہ حضرت ان کے تھے مہاجر، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت حسان بھی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال تو خلاصہ تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جیسے لکھا انہوں نے کہ تم پر حرمت علیکم، تم پر یہ جانور وغیرہ حرام کیے گئے ہیں. مردار، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو المیتۃ یعنی مردار، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور جو کہ باوجود واجب الذبح ہونے کے بلا وجہ شرعی مر جائے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ ذبح کرنا واجب تھا لیکن یہ ذبح نہیں کیا جا سکا بلکہ مر جائے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ بلا وجہ شرعی، یعنی شرعی طریقہ تو کیا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے لیکن اس کے بغیر ہی یہ اس کی روح نکل جائے، قبض ہو جائے، تو اس کو جو ہے وہ میتہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو مردار کہتے ہیں. اچھا، دوسری چیز جو حرام کی گئی تمہارے اوپر، ودم، ٹھیک ہے؟ ادم، دم جو ہے وہ خون کو کہتے ہیں، جو بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے؟ یعنی خون کا تھوڑا سا اگر جیسے ایک ٹریسز رہ جاتے ہیں نا وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ इतना सिग्निफिकेंट हो के जो कि बहने ही वाली शक्ल में हो, उसके लिए ये लफ्ज दम का इस्तेमाल होता है, बहते हुए खून के लिए। और खिंजीर का गोश्त, वल्लहमुल खिंजीरी, ठीक है, यानी इसको तुम खा नहीं सकते। वैसे तो जो शदीद कस्म की कराहियत है वो तो पूरे की पूरे खिंजीर के वजूद के साथ है, ठीक है, हर चीज, एनी थिंग टू डू विद खिंजीर, तो उसके साथ तो शदीद कस्म की कराहियत है। लेकिन खाने से जो मुताल्लिक है तो वो ज़ाहिर, यानी गोश्त खाया जाता है, ठीक है, यानी आप जो है वो गाय की भी खाल नहीं खाते, ठीक है ना, गाय की भी खाल तो नहीं खाते ना, तो गोश्त ही खाते हैं ना, तो गोश्त जो है वो गाय का हलाल है। तो उसी तरीके से ये नहीं है कि सुअर का गोश्त हराम है और उसकी खाल हलाल है, ठीक है, नहीं, खाल तो खाई ही नहीं जाती ना, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ जो है वो गोश्त की बात हो रही है कि भाई गोश्त भी नहीं खा सकते उसकी, उसका खंजीर का। इसी तरह इसके सब अज्जा जो कि हजरत ने फिर तफसीरन बात को मजीद एक्सप्लेन करते हुए ब्रैकेट्स में लिख दिया कि इसके सारे अज्जा ही जो है वो हराम है। अच्छा, और जो जानवर के बकसद कुर्बत गैरुल्लाह के नामजद कर दिया गया हो, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाही, जिसको डेडिकेट कर दिया गया हो अल्लाह के अलावा किसी के ऊपर भी, किसी के लिए भी, कि भाई ये तो उसके नाम के ऊपर, ये ना, ये जानवर उसके नाम का जानवर है, यानी ये नहीं कि वो बंदा कुर्बान करेगा, जैसे कि कुर्बानी के नाम आजकल जमा किए जा रहे हैं ना कि भाई उनके नाम की कुर्बानी है, उनके नाम की कुर्बानी है, या उनको सवाब के लिए कुर्बानी, नहीं, बल्कि उनकी तज़ीम के लिए कुर्बानी, ठीक है, उनके नाम पर कुर्बानी जिसको करना कहते हैं उर्दू जुबान में, ठीक है। तो जो किसी गैरुल्लाह, गैरुल्लाह में हर हर मखलूक आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है और खालिक के अलावा सब कुछ मखलूक है, तो कोई भी मखलूक हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुनाहगार हो, चाहे अल्लाह की वली हो, चाहे अल्लाह का नबी हो, ठीक है ना, है गैरुल्लाह, ठीक है, तो उसके नाम की कुर्बानी, अल्लाह के नबी के नाम की कुर्बानी का मतलब क्या होता है कि उनके सवाब के लिए कुर्बानी की जा रही है, ये नहीं कि उनकी अजमत के लिए, कि उनको अल्लाह की तरह का मान करके उनके लिए जो है कुर्बानी की जा रही है, नहीं। तो अगर ऐसे किया गया अल्लाह के नबी के ही नाम पर क्यों ना किया गया हो, वो हराम हो जाता है, ठीक है ना। सवाब के लिए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तारा तौफीक दे, नबी अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानी करते हैं और अपने वालिदैन के नाम की कुर्बानी करते हैं, अपने मशाइख के नाम की कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो जायज़ है, ये जायज़ नहीं है जिसके यहाँ पर बात हो रही है। अक्सर देखा गया है कि गांव में खंजीर होते हैं, अगर गलती से खंजीर हमारे जिस्म पर टच हो जाए तो उसका क्या हुक्म है, अपने जिस्म को काट के फेंक दें क्या हुक्म है भाई, जब कोई नजासत टच हो जाती है तो क्या करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो नजासत जो है वो टच होने का भी क्या है कि अगर गीला हो ना, गीली सरफेस से नजासत ट्रांसफर होती है, अगर बिल्कुल ड्राई सरफेसेस टच हो तो इवन नजासत की जो है ना वो भी ट्रांसफर नहीं होती दूसरे सरफेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन एहतियातन अगर आपके जिस्म से कोई ड्राई नजासत भी टच हो जाए तो फिर धो लेंगे ना उसको, तो उधर भी धो लें भाई, पानी से जो है वो नजासत दूर हो जाती है, ठीक है। और वैसे भी अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर अब जो है परेशान ना होते रहे कि अच्छा अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि वो ड्राई थी, ठीक है, तो ड्राई से तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं होती है, तो टच हो जाने से कुछ नहीं होता, दूर रहें वो, उसको तो इंसान को तो देख कर घिन आती है, जैसे बाथरूम की नजासत नहीं है तो आप क्या उससे खेलते फिरते हैं ना, वो तो उसको तो देख कर ही घिन आती है ना, उससे दूर रहते हैं ना इंसान, उसी तरह का मामला जो है वो खिंजीर का भी है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए चीजें बनाई है भाई, ठीक है ना, बाथरूम की नजासत भी ना बनाते तो क्या हो जाता, ठीक है ना, कोई खुशबूदार चीज हमारे जिस्म से निकल आती, खाने खुशबूदार खाने खाते हैं तो खुशबूदार चीज ही बदन से निकल आती, ठीक है ना, तो क्या मुश्किल था अल्लाह के लिए बना देना, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया, ठीक है, अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया। हमें जो भी इसमें हिकमत है, एक हिकमत तो समझ में आती है कि देखो तुम कितने गंदे हो कि अच्छी चीज तुम्हारे अंदर जाती है और गंदी होके निकलती है, तो तुम्हारी वजह से गंदी हुई है ना, तो तुम अपने आप को अच्छा मत समझना शुरू कर दो, गंदा ही समझो अपने आप को, ठीक है। तो अपने औकात दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं हमारे लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से कोई कहे कि भाई ये इस जानवर का क्या कसूर, भाई अल्लाह का निजाम है भाई, अल्लाह की मर्जी, ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको जो है वो नजस बना दिया और हमें इससे दूर रहने के लिए तालीम दिलवा दी, खत्म बात। अच्छा तो लहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैर अल्लाह बिही, ये भी हो गया। और फिर वल मुन खाने कातू, तो मुन खाने कातू के बारे में हजरत ने क्या लिखा कि जो गला घुटने से मर जाए, स्ट्रैंगल्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, सांस बंद हो जाती है, सांस की नाली जो है वो बंद हो जाती है, तो फिर बिलाखिर मौत हो जाती है। फौरन मौत नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मौत हो जाती है। अच्छा, और जो किसी ज़र्ब से मर जाए, जिसके लिए अरबी का लफ्ज है वल मौकूदतु, ठीक है, यानी ऐसा उसको हिट लगे कि वो फेटल फेटल फेटली हिट, ठीक है। अच्छा, और जो ऊंचे से गिरकर मर जाए उसके लिए वल मुतरद्दियतु, फेटल फॉल, ऐसी ऐसा गिरा, वरना तो गिरते रहते हैं लोग लेकिन मरते तो नहीं है ना, लेकिन ऐसी उसको गिरा के मर ही गया, मसलन पहाड़ से गिरा, कुएं में गिर गया, ठीक है। और जो किसी की टक्कर से मर जाए वह नतीहत, किसी की टक्कर से मर जाए, ठीक है, यानी कोई ऐसी टक्कर के खौफनाक है, जैसे गाड़ी की टक्कर होती है, ठीक है, या जो है वो जानवर ही एक दूसरे को जो है वो ऐसी टक्कर मारे, चाहे अपनी सींगों से मारे, चाहे अपने जो है वो सर से मारे, जानवरों कुछ जानवरों के सर इतने यानी तो वो हैवी होते हैं और इतना जबरदस्त उनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ होती है कि वो अपनी टक्कर से जो है वो मार देते हैं। तो बहरहाल टक्कर की वजह से कोई मर जाए तो उसके लिए लफ्ज है बन यानी अन्नतीहत। अच्छा, वमा अकला सबरू, जिसको कोई दरिंदा पकड़कर खाने लगे, सब जो है वो दरिंदे के लिए, जिसको जो भी हो, बिल्ली हो, बिल्ली भी तो दरिंदा है ना, हमने देखा पार्क में सुबह को जाते हैं ना तो बिल्लियां जो है वो शिकार की तलाश में रहती हैं, और कभी किसी के हाथ में जो है, किसी के मतलब मुंह में जो है वो कबूतर आ जाती है, कभी कोई फाख्ता आ जाती है, तो छोटी सी दरिंदा बिल्ली भी हैं और बाकी बड़े बड़े शेर सब। अच्छा, तो दरिंदा पकड़कर खाने लग जाए, वोल्व्स वगैरह, इवन कुत्ता भी जो है वो दरिंदे ही में आता है, और इसकी सदमे से वो मर जाए, यानी दरिंदा खाली पकड़ नहीं ले बल्कि फिर वो मर भी जाए, जैसे कि कुत्ता उसके जरिए से शिकार करना जो है वो जायज है, लेकिन ये नहीं कि कुत्ते ने उसको पकड़ा और वो मर गया कुत्ते के मुंह के अंदर ही, तो फिर वो नाजायज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इल्ला मा ज़क्कैतुम, तो सिवाय जिसको कि तुम पाक कर लो, तो इल्ला मा ज़क्कैतुम के बारे में हजरत आनवी ने क्या लिखा कि मुन खनिकतु से मा अकलस सबउ तक, जिनका जिक्र है इनमें से जिसको तुम दम निकलने से पहले, यहां पर उर्दू वाला दम है, पीछे जो था ना जो अद्दमु जो था वो अरबी का दम था यानी खून, और यहां पर उर्दू का दम है यानी सांस रूह, ठीक है, तो देखें लफ्ज एक ही है और जो है वो अरबी में उसके अलग मानी है और उर्दू में उसके अलग मानी है। सुबह को कुदरतम खवातीन की क्लास में भी यही बात हो रही थी कि जाहिल लफ्ज है लेकिन अरबी में जाहिल का लफ्ज जो होता है वो सिर्फ जो है वो कम यानी इल्म की कमी या इल्म का ना होना उसके लिए कहा जाता है, और उर्दू के अंदर जाहिल जो है वो गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही मतलब ही डिफरेंट हो गया। तो दम निकलने से पहले कायदे शरिया के मुताबिक तुम उसको जबह कर डालो, यानी जो चार रगें होती हैं ना गर्दन के अंदर उनमें से तुम कम अज कम तीन, सबसे बेहतर तो है कि चारों को काट डालो, चार को नहीं कर सकते तो कम से कम तीन को तो काट डालो, ठीक है, ये शरीयत का तरीका है ज़बह करने वाला। और आजकल कुर्बानी के दिन भी आ रहे हैं और हमारे यहाँ तो कुर्बानी के मसाइल की भी क्लास चल रही है, अगली मेरे ख्याल में अगली वर्कशॉप के अंदर साहब ज़बह का तरीका भी बताएंगे, तो कायदे शरिया के मुताबिक तुम उसको ज़बह कर डालो, और वो इस हुरमत से मुस्तस्ना है, यानी अभी उसको चोट तो ऐसी लग गई थी कि बस दम निकलने वाला था, या उसका गला तो इतना घुट गया था कि बस उसकी सांस खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुमने उसको ज़बह कर दिया ना तो वो हलाल है, ठीक है। और नीज वो जो जानवर गैरुल्लाह की परस्तिश गाहों पर ज़बह किया जाए, यानी ऐसे मंदिरों पर या ऐसी जो है वो जगहें जहां पर अल्लाह के गैर की इबादत होती है, ठीक है, परस्तिश इबादत, या उसको जो है वो इतनी उसकी ताजीम की जाती है अल्लाह के गैर की कि जो गोया के यानी जो कि इबादत के उसमें आती है, तो ऐसी जगह पर जो जबा किए गए तो वो भी हराम है। गो के जुबान से गैरुल्लाह के नामजद ना करे, ठीक है ना, जुबान से गैरुल्लाह के नाम पे जबा करना वो तो ओहिल्ला लिगैरिल्लाह ही में गुजर चुका है, वो ओहिल्ला लिगैरिल्लाह ही वो तो गुजर चुका। अब यहाँ पर वमा जुबिहा अलन नुसुबी की बात हो रही है, नुसुब से मुराद वही किसी थान, वो आस्ताना कह लें, थान कह लें, या अंग्रेजी में ऑल्टर्स कहते हैं, ALTARS, ऑल्टर्स, ठीक है। तो ऐसी परस्त जगहों के ऊपर जबा किया जाए, बेशक नाम से गैरुल्लाह यानी किसी गैरुल्लाह का नाम नहीं ले रहा है, बस वहां पे जाकर के जबा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि मदार हुरमत का नियत खबीसा पर है, नियत खराब है ना, वहां पे जाके क्यों जबा कर रहा है, ठीक है। तो नियत अल्लाह ताला जानते हैं, और अल्लाह ताला ने ही उसको हलाल करना है उसके लिए या हराम करना है उसके लिए, तो अल्लाह ताला तो नियत जानते हैं। तो और ये खुद भी अपनी नियत जानता है कि क्यों जाकर के वहां पे ज़बह कर रहा है। तो इसका जो नियत खबीसा होती है ना, इसका जुहूर कभी कौल से होता है, यानी जुबान से बात इंसान करता है तो उसकी नियत जाहिर हो जाती है, ठीक है, और कभी फेल से होता है कि ऐसे मकामात पर ज़बह कर रहा है, ठीक है। यानी नियत जो है ना, ये तो दिल का फेल है, जुबान से अगर उसका इजहार करते हैं तो इंसानों को भी पता चल जाता है, लेकिन अगर जुबान से इजहार नहीं करते तो इंसानों को तो पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह को तो पता चलता है ना। तो इंसानों के लिए भी अल्लाह ताला ने एक और भी चीज रख दी कि फेल से भी तुम नियत का अंदाजा कर सकते हो, किसी के फेल से भी तुम नियत का अंदाजा कर सकते हो। जैसे कि इसी क्लास के अंदर आप में से किसी ने सवाल किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मुत्तकी है, ठीक है, तो जुबान से कहता फिर रहा है मैं मुत्तकी हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा वो मुत्तकी है। नहीं, जो जुबान से कहेगा कि मैं मुत्तकी हूँ वो तो मुत्तकी है ही नहीं, पहली बात खत्म हो गई बात, वो तो मुत्तकी हो ही नहीं सकता जो जुबान से कह रहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमें के मुत्तकी हैं, ताकि हम उसका इकराम करें। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम वाली बात चल रही थी, तो कैसे पता चलेगा भाई? उसके अफआल से पता चलेगा कि गुनाहों से बचता है, गुनाहों के मौकों से बचता है, ठीक है, फराइज अदा करता है, ठीक है, वाजिबात जो है वो पूरे करता है, और उसके अखलाक अच्छे हैं, लोगों को जो है वो अजियत नहीं पहुंचाता है, जुल्म नहीं करता है लोगों के ऊपर, लोगों के साथ अच्छे से रहता है, तो बस उसके अफआल से हमें पता चल रहा है कि वो मुत्तकी है, ठीक है ना, और इतना ही काफी है हमारे लिए, उतना ही काफी है, फिर हम उसकी इकराम करेंगे, उसकी ताजीम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही वाला उसूल चल रहा है कि भाई फेल से भी पता चल जाता है, हमारे लिए इतना ही काफी है कि फेल से हम फैसला कर लें कि वो ये हराम है, ठीक है, क्योंकि इसने ऐसी जगह पे जाकर के ज़बह किया है। अच्छा, और फिर क्या कि और ये भी हराम है कि गोश्त वगैरह तकसीम करो बजरिए कुरा के तीरों के, ठीक है, वह अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, कुरा निकालने वाले जो तीर, ये उस जमाने में होता था, अब तो करते हैं आजकल भी लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन तीरों के जरिए से है ना कुरानंदाजी किया करते थे, तो पता नहीं क्या तरीका होता था कि वो ऐसे घुमाते थे या ऐसे निकालते थे उसमें से। तो अब उनकी बुनियाद पर जो है ना वो गोश्त तकसीम करते थे कि उसको इतना हिस्सा मिलेगा जिसके नाम का तीर निकल आएगा, और जिसके नाम का तीर नहीं निकलेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये अमल भी हराम है, ठीक है, तो ऐसे जो जो गोश्त तकसीम किया जाए वो गोश्त भी हराम हो जाता है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि बजरिए कुरे के कुरा के तीरों के ये सब गुनाह और हराम है, ठीक है, जालिकुम फिस्क, ये सब फिस्क, फिस्क का लफ्ज़ जो है वो गुनाह के लिए, फासिक, फासिक गुनाह करने वाला, अरबी जुबान की बाकायदा यानी डिक्शनरी में देखा जाए तो फासिक का जो लफ्ज है ना ये इस्तेमाल होता है चूहों के लिए, चूहा, ठीक है ना, और जो छुछुंदर किस्म के जो कि गंदी जगह पे रहते हैं और जिनको जो है ना वो मार दिया जाता है, ठीक है, ये जो चूहे गंदी जगह से निकल करके अगर आपके घर में आ जाए ना तो मार दिया जाता है ना इनको, तो उसी तरीके से फासिक जो होता है ना वो भी चूहे की माने तो गंदा गलीज, जिसको कि फिर ना यानी छोड़ा नहीं जाता, तो अब उसकी हैसियत, उसकी जिंदगी की हैसियत ऐसी है जैसे कि चूहे की जिंदगी की हैसियत। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है वो हम किसी गुनाहगार को देखें तो उसको पकड़ के चूहे की तरह मार दें, हरगिज नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब ये है कि जो गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा होता है ना, अल्लाह के नजदीक उसकी हैसियत चूहे जैसी हो जाती है। ठीक है, वो प्यारा वाला चूहा नहीं जो कि लोग पेट के तौर पर रखते हैं, वो क्या कहते हैं उसको आजकल लोगों ने, उसको पेट भी बनाया होता है, नहीं बल्कि गलीस चूहा, गंदा चूहा, अब उसकी जिंदगी की हैसियत नहीं है, हैमस्टर। जी ठीक है, तो गुनाहगार जो होता है ना उसकी फिर इतनी सी वैल्यू हो जाती है बस। इसी वजह से जब अल्लाह का अजाब आता है ना ऐसे गुनाहगार मुसलमानों के ऊपर, तो अल्लाह ताला काफिरों को ऐसा उनके ऊपर एक्सेस दे देते हैं कि काफिर उनको चूहों की तरह से मारते हैं, चूहों की तरह से मारते हैं। ठीक है, और आप तारीख आप पढ़ लें, दुनिया के हालात। ठीक है, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें गुनाहों से जो है ना वो बस निकलने की फिक्र करनी है, हर सूरत निकलने की फिक्र करनी है, क्योंकि हम जो है ना वो फासिक वाली वैल्यू को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक्स हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फिस्क वाली, फासिक वाली, कि हमारी हैसियत अल्लाह के नजदीक जो है वो चूहे की जैसी हो जाए। ठीक है, अजाब आता है फिर उसके ऊपर, तो ज़ालिकुम फिस्क, ये फिस्क, ये गुनाह है। अच्छा, आज के दिन यानी अब ना उम्मीद हो गए काफिर लोग तुम्हारे दीन के मगलूब व गुम हो जाने से। ठीक है, अलयौमा, आज के दिन, यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, कि तुम्हारा दीन जो है ना वो अब मगलूब हो जाएगा, गुम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब जो है ना असबाब बन गए हैं, मुसब्बिबुल असबाब तो पहले भी दीन के साथ था, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, वो तो पहले दिन से इस दीन के साथ था, जब नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो वही नाजिल हुई थी और आप ने जो है वो बीवी को जाकर के अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया था, वो तो मुसब्बिबुल अज़बाब की मदद तो उस वक्त से साथ थी ना, लेकिन कुफार और इंसानों के सामने तो अज़बाब की दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई। ठीक है, अज़बाब उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, आहिस्ता 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 है अस्बाब जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, फिर जो है वो निज़ाम बन रहा है, और मदीना तैयबा में जाकर के थोड़ा सा निज़ाम बना, फिर जो है वो बदर का मार्का हुआ, फिर उहद का मार्का हुआ, फिर खंदक का मार्का हुआ, फिर सुलह हुदैबिया हुए, फिर लोग जो है वो जौक दर जौक दाखिल होना शुरू हुए, हत्ता के कल्मिनेशन कहाँ पर हुई जाकर के, फतह मक्का के अंदर हुई, और जो है ये हज्जुल विदा का दिन था। तो असबाब जब बन जाते हैं ना, तो अब जो है ना ये काफिर ये मायूस हो जाते हैं कि अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अब हम इसको ओवर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें जो है ना वो इसको खत्म करने के लिए, ये तो नहीं है कि इसके बाद जो है वो शैतान अपनी मेहनतें छोड़ देता है, या जो दुश्मनान दीन है वो अपनी मेहनतें छोड़ देते हैं, नहीं, मेहनतें कोई नहीं छोड़ते, वो पहले भी उन्होंने नहीं छोड़ी, दरमियान में भी नहीं छोड़ी और आखिर में भी नहीं छोड़ेंगे, मेहनतें करते रहते हैं, लेकिन मेहनतों का रुख बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो वो अंदर घुस करके फिर मेहनत करने की कोशिश करते हैं, अंदर से खराब करके मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी तरीका इनका होता है वो करते रहते हैं। तो इससे पहले जो थे ना ये बड़े इस उम्मीद में थे कि हम जो है ना इस दीन को खत्म ही कर देंगे, बदल ही देंगे इसकी जो है ना, वो जैसे है ना नऊज़ बिल्लाह गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, तो हम इस गुब्बारे में से हवा निकाल देंगे, बस खत्म हो जाएगा ये दीन का सारा मामला। लेकिन अब इनके लिए जो है ना वो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अब जो है वो दूसरे तरीके से कोशिश करते रहेंगे। तो काफिर लोग तुम्हारे दीन के मगलूब व गुम हो जाने से मायूस नाउमीद हो गए, क्योंकि माशा अल्लाह इस्लाम का खूब शुयू हो गया। ठीक है, शाया हो गया, खूब उसकी पब्लिकेशन हो गई, खूब उसकी जो है वो स्प्रेड हो गया उसका। सो इन कुफार से मत डरना, फला तख्शौहुम वख्शौनी, इन कुफार से मत डरना तुम, कि तुम्हारे दीन को गुम कर सकेंगे, और मुझसे डरते रहना। ठीक है, तो यानी मेरे अहकाम की मुखालफत मत कर। ठीक है, तो एक इंसान की नफ्सियात भी तो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, नफ्सियात जो है वो बहरहाल इंसान के साथ रहती है, तो जब उसके सामने कोई असबाब होते हैं डराने वाले असबाब, तो उसको डर लगता है। ठीक है, अल्लाह ताला ये बात याद दिलाते रहते हैं बार बार अपने नबी अलैहि सलाम को भी, और जो तो मुसलमान वहां पे मौजूद थे, कि इनसे मत डरना, मुझसे डरो। ठीक है, मुझसे डरने का तरीका क्या है, ये बस मेरे अहकामात की मुखालफत मत करना, वरना मेरी नाराजगी से तुम नहीं बच सकोगे। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने हर तरह कामिल कर दिया। अल यौमा अकमल तो लकुम, कामिल अकमला युकमिलू, तो इसका जो है वो वाहिद मुतकल्लम का सीगा, अकमल तू, मैंने कामिल कर दिया तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, दीन अकुम तुम्हारे दीन को। ठीक है, दीन तो अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ऐसी इज्जत अता फरमाई कि इस दीन को ईमान वालों का भी, वहां पर जैसे कहते हैं ना कि भाई ये घर तो मेरा है लेकिन आपका भी तो है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है, किसी का दिल रखना, किसी को जो है वो जरा अच्छा मोटिवेट करना कि अभी आपका भी है, खाली मेरा नहीं है। ठीक है, आपने जो है ना वो यानी अपने आप को ऐसा प्रूव किया है कि आप भी इसके अहल कहलाने के काबिल हो गए हैं, आप भी इसके अहल कहलाने के काबिल हो गए हैं। ठीक है, तो दीनकुम, वैसे भी पहले भी वो जो सूरह काफिरून के अंदर लकुम दीनकुम वलिया दीन, मेरे लिए भी दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। खैर, दीनी का लफ्ज तो उधर भी नहीं था, उधर भी मेरे लिए दीन है, यहाँ पर तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये दीन है, मैंने मुकम्मल कर दिया है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने हर तरह कामिल कर दिया है, कुव्वत में भी, कि जिससे कुफार को मायूसी हुई, और अहकाम व कवाइद में भी, और इस इकमाल से यानी अल्लाह ताला के जितने फराइज थे, जितनी जो है वो मुहकम आयात थी, वो सब डन हो गई, कंप्लीट हो गई, अब उनके अंदर जो है वो चेंज नहीं होनी, कि अब जो है वो कोई फर्ज को जो है वो खत्म कर दे, चेंज कर दे कि नहीं जी ये चीज अब फर्ज नहीं है। ठीक है, अब ये चीज नहीं हो सकती, अब खत्म, ये यानी सील जो है ना वो लग चुकी है इस दीन के ऊपर, ना तो फर्ज को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, ना कम किया जा सकता है, ना तब्दील किया जा सकता है, यानी ना खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अहकाम व कवायद में भी मुकम्मल कर दिया, और इस इकमाल से मैंने तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया, व अनअमतु अलैकुम निअमती, अतममतु अलैकुम निअमती, अनअमतु नहीं बल्कि अतममतु अलैकुम नियमती, यानी अपनी नेमत को जो है वो तुम्हारे ऊपर तमाम कर दिया, मुकम्मल कर दिया। दीनी इनाम में भी के अहकामात की तकमील हुई, और दुनियावी इनाम भी के कुव्वत हासिल हुई, और इकमाल दीन में दोनों ही आ गए। यानी जो अल्लाह ताला ने यहां पर अपनी नेमत बयान फरमाई, तो उसमें दुनियावी ताकत भी इसके अंदर शामिल है, और जो रूहानी ताकत भी जो थी वो भी इसके अंदर शामिल है, कि मैंने मुकम्मल कर दिया। अब जो है ना वो सारा का सारा जो मामला आगे चलेगा ना, वो इसी की एक्सटेंशन चलेगी, जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर आज मुकम्मल कर दी है। ठीक है, जो कहते हैं ना जैसे कि कमाया तो हमारे बाप दादा ने था, हम तो बैठ के खा रहे हैं, हम तो बैठे उसकी खा रहे हैं, जो उन्होंने कमाया था, जो उन्होंने मेहनतें करी थी। ठीक है, तो जितना कमाना था उन्होंने कमा लिया, अब हम कोई नया नहीं कमा रहे हैं, हम गोया कि उसी की जो है ना वो रेजगारी खा रहे हैं, या उसी की जो है वो जकात खा रहे हैं, या उसी की जो है वो कंटिन्यूएशन खा रहे हैं, उसी को जो है वो आगे इन्वेस्ट कर दिया, अब जो है वो हम बैठे खा रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया, नेमत को मुकम्मल कर दिया। ठीक है, अच्छा, और मैंने इस्लाम को तुम्हारा तुम्हारा दीन बनने के लिए हमेशा को पसंद कर लिया, यानी कयामत तक तुम्हारा यही दीन रहेगा, इसको मनसूख करके दूसरा कोई दीन तजवीज नहीं किया जाए। ठीक है, जैसे ये नहीं होगा कि 1400 साल गुजर जाएंगे या 1000 साल गुजर जाएंगे तो दीन इलाही तुम्हारे कोई नया दीन जिसको कि दीन इलाही का नाम दिया जाएगा, जैसे अकबर बादशाह ने इंडिया के अंदर करने की कोशिश करी थी कि जी एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, हिंदुइज्म और सिखिज्म और इस्लाम और जो भी और दूसरे मजाहब हैं इंडिया के अंदर, उन सबका एक मिक्सचर बना करके जो है ना वो उसको दीन इलाही का नाम दे दिया। ठीक है, तो नहीं, दीन इलाही तुम्हारा दीन नहीं है भाई, बल्कि यही इस्लाम ही तुम्हारा दीन है, और इस्लाम को ना तो तब्दील किया जा सकता है और ना जो है वो इस्लाम को छोड़ा जा सकता है कि कोई और दीन। ईसाइत कुछ अरसे के बाद जो है तुम्हारा दीन ईसाइयत बन जाए, नहीं, ईसाइयत तुम्हारा दीन नहीं बनने वाला, यहूदियत तुम्हारा दीन नहीं बनने वाला, तुम्हारा दीन तो इस्लाम ही रहेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है, यानी क्या मतलब तुम्हारा यही दीन रहेगा, उसको मनसूख करके दूसरा दीन तजवीज नहीं किया जाएगा। बस तुमको चाहिए कि मेरी नेमत का शुक्र करके इस दीन पर पूरे पूरे कायम रहो, ठीक है। जैसे कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं ना कि उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, ठीक है तो इस्लाम तुम्हारे सामने मौजूद, ठीक है, यानी कुरान भी मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा भी मौजूद है, सहाबा कराम की भी जो है वो जिंदगियों के अहवाल मौजूद हैं, तुम्हारे अपने मशाइख की भी सब कुछ मौजूद है, द गेट इज राइट देयर, जस्ट एंटर इट, ठीक है ना। उसको तब्दील करने की कोशिश ना करना कि भाई मैं उसको अपने ऊपर किसी तरह से अपने ऊपर चढ़ाऊं उसको तब्दील करके, नहीं बल्कि उसके अंदर एंटर हो जाओ, ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश ना करना। तो बस तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करके सेम इस दीन पर पूरे के पूरे कायम रहो। फिर अशियाए मस्कूरा बाला की हुरमत दरियाफ्त कर लेने के बाद ये भी तुम मालूम कर लो, यानी ये भी तुम जान लो कि जो शख्स शिद्दत की भूख में बेताब हो जाए और इस वजह से अशियाए बाला को खा ले, यानी जिनको के हराम किया गया है, भूख की शिद्दत से बेताब होकर के, यानी बर्दाश्त ना किया जा रहा उससे और मौत जो है ना उसको अपनी नजर आने शुरू हो जाए कि अगर नहीं खाएगा कुछ भी तो फिर मर जाएगा, तो इस हालत में, यानी मर जाए से मुराद यहाँ पर यही है कि भाई एक इंसान कैसे गेज करेगा ना कि मैं बस मर जाऊंगा, उसको तो नहीं पता कि मैं वाकई मरूंगा कि नहीं मरूंगा, लेकिन इंसान की एक 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 कैपेसिटी होती है, वो उसको अंदाजा हो जाता है कि बस इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी वजह से बेताब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये नहीं कि अब तुम्हें जो है वो मौत का फरिश्ता नजर आना शुरू हो जाए ना तो फिर तुम जा करके खा सकते हो, मौत का फरिश्ता तुम्हें नहीं नजर आने वाला है उस वक्त, जो है वो तुम्हारी हालत ही ऐसी नहीं होगी कि तुम जा करके कोई चीज उठा के अपने मुंह में डाल सको, तुम्हारी अपनी बेताबी जो है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर, ठीक है। तो इस वजह से अशियाए बालों को अगर खा ले, जैसे ये सब जो है मुनखनिकतु मुतरद्दियतु नतीहतु मौकूदतु वगैरह, तो या दम, ठीक है, तो बशर्ते के किसी गुनाह की तरह उसका मेलान ना हो, यानी ना कदरे जरूरत से ज्यादा खाए और ना लज्जत मकसूद हो, ठीक है, तो वही दिल की नीयत ही का सारा मामला है। तो अल्लाह ताला को पता है कि तुम जो है वो यानी जरूरत से ज्यादा खा रहे हो या जो है वो गुनाह, असल में तुम तो कह रहे हो कि नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे मौके पर ये जो दिल की कैफियत है ना कि कुछ नहीं होता, खा तो रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, क्या होता है, या कभी तो खाते हैं कुछ नहीं होता उनको, मैं भी खा लेता हूँ, ये दिल की नीयत ना हो तुम्हारी, ठीक है, और अल्लाह ताला इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो फिर जो है ना तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं होगा, ठीक है। जिसको कि सूरह बकरा में गैर बागिन वला आदिन, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह की सिमिलर, काफी सिमिलर अल्फाज हैं सूरह बकरा के उस वाली आयत में के जिसके अंदर गैर बागिन वला आदिन से ताबीर फरमाए, बागिन का मतलब होता है बगावत करने वाला, नाफरमानी करने वाला, और आदिन से भी यही मुराद है, यानी हद से तजावुज करने वाला, बागिन का बस यहाँ पे जरा नाफरमानी का ही मानी लेते हैं, गैर बागिन या ना नाफरमानी का ख्याल हो और ना जो है वो हद से तजावुज करने का, यानी जितनी जरूरत थी उतनी खा ले, तो यकीन अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, ठीक है। अगर कदर जरूरत का पूरा अंदाजा ना हुआ और एक आध लुकमा ज्यादा भी खा गया और अल्लाह ताला जो है ना वो उसको माफ कर देंगे, तो अल्लाह ताला रहमत वाले हैं कि ऐसी हालत में इजाजत दे दी कि एक आध लुकमा, अब ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थोड़ी इंसान कर सकता है कि इतने ग्राम्स खाऊंगा तो मेरी जान बच जाएगी और इतने ग्राम से ज्यादा खाऊंगा तो वो जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन तो हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल इस तरह की कोई चीज, तो भाई अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ना तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देंगे, फइन अल्लाह गफूर रहीम। अच्छा, मारूफ मसाइल से पहले जो है वो यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि लास्ट टाइम यू सेड कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी है क्लास में आने की, बात से एग्री करने की, तो आप बताएं बात आगे, विच यू कॉल्ड बलाहुल मुबीन, ठीक है, मैंने कहा कुरान मजीद की आयत है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, इफ माय फैमिली इज नॉट इंटरेस्टेड इन दीन की बातें, फर्ज का इल्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गुनाह तौबा करना, इफ दे शाउट ऑन मी जस्ट टू स्टॉप मी राइट देयर, देन व्हाट, चूज पीस और कंटिन्यू टू टेल। ठीक है, इनका सवाल उम्मीद है सबने सुन लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। मैं एक दफा और पढ़ लेता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है कि सर लास्ट टाइम यू सेड आपको अल्लाह ने तौफीक दी है क्लास में आने की, बात से एग्री करने की, तो आप बताएं बात आगे, विच यू कॉल्ड बलाहुल मुबीन। तो इफ माई फैमिली इज नॉट इंटरेस्टेड, अगर मेरी फैमिली जो है ना वो सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी ना रखती हो, फर्ज फराइज का इल्म हासिल करने में दिलचस्पी ना रखती हो, गुनाह से तौबा करने में दिलचस्पी ना रखती हो, और जब मैं उनसे कोई बात करूं तो वो मेरे ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें और मुझे उधर ही रोक दें कुछ भी बात करने से, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या जो है वो मुझे खामोश हो जाना चाहिए या मुझे अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए? ठीक है, तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि आपको जो है वो जारी तो रखना है, जारी रखना है, लेकिन अपने तरीके को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहें। ठीक है ना, ये जो बलाग़ुल मुबीन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, ये इसीलिए इस्तेमाल किया है कि सिर्फ आपने पीछे से सुना वो मैसेज एज इट इज आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, बल्कि उस मैसेज को इम्प्रूव करना है। ठीक है ना, ऐसा बनाना है कि जो कि उनको अपील करे, उनको समझ में आ जाए और उनके हालात से मुनासबत रखता हो। ठीक है ना, यानी जिसको कहते हैं ना हिट द आयरन व्हेन इट्स रेड। ठीक है ना, तो आप इस मौके की तलाश में रहें, आप जो है वो ऐसी चीजें तलाश करें कि जहां पर दे हैव ए वीक पॉइंट। ठीक है ना, और उस वीक पॉइंट का जो हल जो है वो आप दीन से निकाल करके उनको समझाएं। तो ये आपके अपने करने की मेहनत है। ठीक है ना, ये हमारे करने की मेहनत है कि हम अपने मैसेज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करते रहे। ठीक है, और ये इट टेक्स टाइम, ये नहीं कि अगले बंदे को समझाना को कायल करना जो है मुश्किल काम है, नहीं, कायल करना तो दूसरे नंबर का काम है, पहले नंबर का काम यह है कि अपने जहन को क्लियर करना, अपने इल्म को जो है वो बढ़ाना, इल्म की गहराई हासिल करना, मसले को समझना, दीन को समझना और दीन की एप्लीकेबिलिटी को समझना। ठीक है, ये हमारे करने का काम है, ये हमारा हासिल करने का इल्म है। ठीक है, तो दावत और तबलीग ये सिर्फ ये नहीं है कि अगले बंदे तक पहुंचाते रहो पहुंचाते रहो पहुंचाते रहो, नहीं, अपना इल्म हासिल करना दिस इज पार्ट एंड प्री रिक्वेस्ट ऑफ दावत एंड तबलीग, प्री रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर मेहनत करती रहें और अब अल्लाह से दुआएं करती रहें। ठीक है, एक तो सबसे पहली दुआ कि अल्लाह मुझे मदद फरमाए इल्म हासिल करने में, बात को समझने में और उसको अच्छे से आगे पहुंचाने में, ए अल्लाह आप मेरी मदद फरमा दीजिए। ठीक है, और फिर जो है वो इल्म हासिल करने के जो असबाब हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए आसान फरमाए, इल्म हासिल करने के जो वेन्यूज हैं वहां से आप इल्म हासिल करती रहें और अपने मैसेज के ऊपर मेहनत करती रहें, कंटेंट ऑफ द मैसेज। ठीक है, ये काफी सारी चीजें करने की जो कि हमने करनी होती हैं और इसी में बस हमने सारी जिंदगी लगानी, हमारी जिंदगी का मकसद यही है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है, एक तो बंदगी करनी है ना जो कि अपना अल्लाह ताला के साथ हमने ताल्लुक बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा काम किया है जो अल्लाह के दूसरे बंदे हैं, हमारे घर वाले, सबसे पहले हमारे घर वाले। ठीक है, तो उन तक जो है वो इस बंदगी के मैसेज को पहुंचाना है, इसी में हमने जिंदगी गुजारनी है, हत्ता कि हमारी मौत आ जाए, हत्ता कि हमारी मौत आ जाए, कोई और काम करने का नहीं है। बाकी सारी जरूरियात हैं वो खाने पीने के काम चलते रहेंगे। ठीक है ना, मकसद जिंदगी वो नहीं है, मकसद जिंदगी तो बंदगी है और बलागुल मुबीन, और बलागुल मुबीन है। ठीक है, क्योंकि रसूलों की उम्मत हैं हम, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं हम, और नबी अलैहिस्सलाम का काम हमने ही करना है, अगला कोई नबी नहीं आना वो वाला काम करने के लिए। ठीक है, चलें, आज सुबह की क्लास अगर आप सुबह वाली क्लास में नहीं है तो उसमें आप ऐड हो जाएं। ठीक है, खवातीन की जो खास क्लास होती है तो उसके अंदर आज कुदरतन इसके ऊपर मजीद और बात हुई है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपके जहन खुलेगा, आपको बात समझ में आएगी, लोगों से भी आप शेयर करेंगी। बल्कि उस क्लास के अंदर तो तकरार के भी ऐसे खवातीन ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो वो आपस में फिर इन बातों को डिस्कस भी करती। ठीक है, तो उससे मजीद फायदा होता है, लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, क्लास के मैसेजेस को जो है वो फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए, ज्यादा इंटरनलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे फायदा होता है। ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर जो है साजिश का, उसको आप अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भेज दें, तो फिर हम उसको ऐड कर देंगे उस ग्रुप के अंदर भी। जैसे ये दीन एसेंशियल्स फॉर मेन है ना, जिसकी शाम को क्लासेज होती है, उसी तरह दीन एसेंशियल्स फॉर वेमेन है, जिसकी सुबह को क्लासेज होती है। ठीक है, तो उसका भी अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर अपने आपको ऐड करवाने बस मैसेज भेज करके। ठीक है, अच्छा आप इस क्लास में आएंगे कैसे, आपके पास नंबर ही नहीं है, तो फिर आप जिसने नंबर दिया है, जिसने बताया उससे पूछ लें। खैर बहरहाल लिख देते हैं, जब बाकी जिनके पास नंबर नहीं है तो वो भी कर लें। ठीक है, वो भी खुद को ऐड करवा लें या अपने घर वालों को ऐड करवा लें। अच्छा इन्होंने लिख दिया, ठीक है, ये नंबर इन्होंने लिखा है अनु साहब ने, इसी नंबर पे अपना कॉन्टैक्ट भेज देंगे। तो याजिज उसमें भी दरस तफसीर जो है वो याजिज ही पढ़ाता है, और उसको एडमिन भी मैं खुद ही करता हूँ। इसकी वजह यह है कि कभी कभी जो है ना वो तमाशे भी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कोई कुछ उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर देता है, कभी कुछ शुरू कर देता है, तो आई नीड टू नो हु इज इन द क्लास। इसी वजह से मैं खुद ही सबको ऐड करता हूँ विद सम रेफरेंस, ताकि कल को किसी ना कोई उल्टी सीधी हरकत शुरू कर दी तो वी नो वेयर टू गो टू। ठीक है, वो यानी अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि अब इंशाल्लाह मालूम मसाला की क्लास में ही शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए हमारे इस आने को, और हमारी समझ को मजीद बेहतर से बेहतर बनाए, और हमें अपनी रजा वाली जिंदगी के जो कबूल फरमाए। वाखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।